अध्याय सात संयोग भावना। घनानंद के प्रेम के स्वरूप की विलक्षणता के संदर्भ में हमने यह देख लिया है कि उसमें एक विशेष प्रकार का संतोष या शांति लक्षित होती है। इनके प्रशस्तिकार वजनाथ ने इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए लिखा है कि बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न मान, अर्थात जो वियोग और संयोग दोनों में ही एक सा अशांत बना रहे। वैसे घनानंद का काव्य मुख्यतः वियोग प्रधान ही है, लेकिन संयोग की तीव्र अनुभूति के बिना वियोग में गंभीरता नहीं आती। इस दृष्टि से विचार करें तो हम पाएंगे कि इनकी संयोग भावना भी अत्यंत प्रबल रही है। उन्होंने स्थूल शारीरिक सुख, बाहरी आनंदोल्लास सहित मान मर्दन, नोक झोंक, धर्मोपचार आदि के प्रसंगों को त्याग कर मिलन में प्राय दर्शनाभिलाषा के आधिक्य का ही चित्रण किया है, जिसमें एक स्थायी असंतोष की गहरी छाया मिलती है। संयोग और वियोग दोनों की घोर अशांति के संबंध में यह उदाहरण पर्याप्त बोधक है। मुख चाह निचाह उमाहन को घन आनंद लाग्यो रहे ही झरें, मन भावन मीत सुजान संयोग बने बिना कैसे वियोग टरें, कब हों च दई गति सो सपनो सो लखों तुम मनोरथ भीर भरें, मिलहूं न मिलाप मिले तन को उरकी गति क्यों करी ब्योरी परें। यहाँ प्रेमी हृदय की विचित्र एवं उलझी हुई स्थिति का चित्रण है। उसे वियोग की भांति संयोग काल में भी मिलन सुख का रंच मात्र अनुभव नहीं होता। एक तरफ तो प्रिय सुजान के संयोग के बिना वियोग नहीं टलता और वियोग काल में प्रिय दर्शन के अभाव में नेत्र निरंतर झड़ी लगाए रहते हैं, तो दूसरी ओर दैव गति से यदि प्रिय स्वप्न की भांति दिखाई भी दे गए तो अभिलाषाओं की ऐसी भीड़ लग जाती है कि उसे भर आँख देख पाना असंभव हो जाता है। फलस्वरूप मिलने पर भी मिलन सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार घनानंद के यहाँ संयोग क्षणिक मिलन मात्र है, संभोग की स्थायी दशा नहीं। इस संबंध में दूसरा उदाहरण है, सुनरी सज्जनी रजनी की कथा इन नयन चकोरन जो बितई, मुखचंद सुजान सजीवन को लखिपाय भय कछु रीति नई, अभिलाखन आतुरताय घटा तबही घन आनंद आनिछई, सुबिहात न जानी परी भ्रमसी कब मय विश्वासिनी बीति गई। रीतिबद्ध कवियों के संयोगिनी नायिकाओं के पास मिलनोत्परांत सखी शैलियों को सुनाए जाने के लिए बहुत सारे सरस वृत्तांत मिलेंगे, जिन्हें कहते हुए वे थकती ही नहीं। इस उदाहरण में मिलनोत्परांत नायिका को सिर्फ अतृप्ति हाथ लगी है। रात्रि मिलन की कथा में नायिका अपने नेत्र की व्यथा ही बता पाती है। प्रिय के मुख को देखते ही अभिलाषाओं की व्याकुल घटा इस प्रकार छा गई है कि उसे कुछ पता ही नहीं लग पाया कि विश्वासघातनी रात भ्रम की भांति कब बीत गई। यह तीव्र दर्शनाभिलाषा ही घनानंद के यहाँ वियोग की भांति ही संयोग की भी प्रमुख विशेषता है। इसे समझने के लिए संयोग का एक स्पष्ट और अपेक्षाकृत अधिक मानसल उदाहरण लिया जा सकता है। पूढ़े घन आनंद सुजान प्यारी पर जंग, धरे घन अंक तव मन रंक गति है, भूषण उतारी अंग अंग ही संहारी नाना रुचि के विचार सौ समोय सीज मती है, ठौर ठौर लय लय राख और अभिलाख है, पनत नर भाख है तेई जाने दशा अति है, मोह मद छाके चुमे रीज बीज रस झूमे, गहे चाहि रहे चूमे आहा कहा रति है। यहाँ शारीरिक संपर्क भी है, लेकिन भांति भांति की अभिलाषाओं के माध्यम से मानसिक असंतोष की तीव्रता व्यक्त हुई है। शारीरिक लगाव प्राय दब गया है। नायक के अंकस्थ होने पर भी नायिका का मन रंक जैसा अनुभव कर रहा है। भूषण आदि उतार कर वह अपने अंग प्रत्यंग को मिलन के लिए तैयार करती है, लेकिन भांति भांति अभिलाषाओं के कारण उसका मन अतृप्ति से भर गया है। पूरी मस्ती चुम्बन अलिंगन आदि क्रियाओं के बावजूद यहाँ किसी को नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वस्तुतः इस प्रकार के आंद्रिक संभोग चित्त घनानंद के यहाँ विरल ही है। इनके संयोग की प्रमुख विशेषता संयोग में भी वियोग का बना रहना ही है। प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण घनानंद के यहाँ प्राय संयोग और वियोग के मध्य का अंतराल लक्षित ही नहीं हो पाता। इस तथ्य को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। ठग बैच हूँ पैच ही रहे उर मय घर के, दुख को सुख दोहत हैं, दृग आग तिबीर तरय न कहूँ जग जोहन अंतर जोहत हैं, घन आनंद मीत सुजान मिले बस बीच तऊ मति मोहत हैं, यह कैसे संजोग बूझ पर जो वियोग न क्यों न यूं बिछोहत हैं। प्रिय के निकट बैठने पर भी नायिका के हृदय में दुख के लिए स्थायी स्थान बनाकर वियोग संयोग सुख का दोहन करता है। यह शत्रु आंखों के सामने से कभी टलता ही नहीं। प्रिय को देखने के समय बीच में से झांकता रहता है। इस प्रकार प्रिय सुजान से मिलने पर भी हमारे मध्य उपस्थित होकर मन को मूर्छित कर देता है। वह नायिका यह समझ नहीं पाती कि यह कैसा संयोग है जिसमें वियोग एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ता। इस प्रकार का वियोग मिश्रित संयोग साहित्य के अंतर्गत प्रायः नहीं मिलता। संध्या आदि नायिकाओं के संदर्भ में रीतिबद्ध कवियों ने संयोग में भी लज्जावश प्रिय को न देख पाने का वर्णन अवश्य किया है, लेकिन घनानंद के यहाँ संयोग में भी वियोग के बने रहने की स्थिति उससे पर्याप्त भिन्न है। इस विशिष्ट स्थिति के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि घनानंद की अधिकांश काव्य रचना अपने प्रियसी सुजान से वियुक्त होने के बाद लिखी गई। जब तक इन्होंने लोक जीवन से संन्यास नहीं लिया था और एक विरही के रूप में जीवन व्यतीत किया था, तब तक उनके संयोग चित्रणों में वियोग की एक काली छाया मंडराती हुई दिखाई देती है। इसे एक मनोवैज्ञानिक कारण माना जा सकता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि राज दरबार में सुजान से प्रेम करते हुए भी घनानंद को उसकी निष्ठा के प्रति आशंका रही हो। इन दोनों कारणों के साथ एक तीसरा कारण यह हो सकता है कि प्रेम में प्रिय की महत्ता और अपनी लघुता की भावना संयोग में आश्चर्य आशंका को सहज रूप में स्थान मिल गया हो। इन सभी तथ्यों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। मोहन अनूप रूप सुंदर सुजान जू को ताहि चाहे मनमोही दशा महामोह की अनोखी ही लग दैया पिछुरे तो मिले चाहे मिले हूँ मैं मारे जारे खरक बिछोह की। प्रिय के अनुपम सौंदर्य को देखकर मन का महामोह की दशा में ग्रस्त होना भी यहाँ संयोग में वियोग की आशंका का कारण प्रतीत होता है। परम सौंदर्यवान प्रिय के मिलन पर आश्चर्य की भावना घनानंद में प्राय व्यक्त हुई है। देख्या न देखने प्रीत पिखियत प्यारे नीट न परत जान दीठ की धो छलह कहाँ कहो आनंद के घन जान राय हो जो मिले हतिहार अन मिले की कुशल है। देखने पर भी न देखने की प्रतीत प्रत्यक्ष में भी प्रत्यक्ष का भ्रम और मिलन में भी अमिल भाव का पोषण प्रेम की विलक्षण मनोदशा का सूचक है। इस विलक्षणता के मूल में कवि का जीवनगत विषम प्रेम ही प्रतीत होता है। हिलक अनोखी क्यों हो धीर धरत मन पीर पूरे हृदय में धरक जगिए रहे मिले हो मिले कुसुख पायन पलक एको निपट विकल अनुलान लागियो रहे। प्रेम का यह पंथ ही अनोखा है जिसमें एक क्षण के लिए भी मन को चैन नहीं मिलता। पीड़ा से आपूरित हृदय में संयोग काल में भी बारंबार आशंका बनी रहती है, इसलिए मिलन के समय भी एक पल के लिए भी संयोग सुख नहीं मिलता। यहाँ भी वियोग की आशंका ही संयोग सुख से प्रेमी को वंचित रखती है। इस संबंध में रीतिमुक्त कवि ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन किया है। पर वीर मिले बिछुरे की व्यथा मिलकर बिछुरे सोई जानत है। यहाँ संयोग और वियोग की व्यथा ही अनिर्वचनीय की ओर संगीत किया गया है। इसे संयुक्त होकर वियुक्त होने वाला ही जान सकता है। वस्तुतः यहाँ ठाकुर ने संयोग के बाद वियोग की व्यथा का ही नहीं वर्णन वियोग के बाद संयोग की व्यथा की ओर भी संकेत किया है। वियोग के बाद संयोग में भी हृदय प्रेम की पीड़ा से परिपूर्ण होता है। घनानंद के उक्त उदाहरण से इसी प्रकार की मिलन के ओर संकेत है। वियोग के उपरांत संयोग की मनोदशा के लिए एक उदाहरण है। उर्गति ब्योरी बेकौ सुंदर सुजान जू को लाख लाख विधि सो मिलन अभिलाखी है बात रिस रस भी निकासी गस गास झीनी बीन बीन आच भांति पांति रचि राखी है। भाग जागे जो जो कहो बिलो के घनानंद तो ताछिन की छाकनी की लोचन ही साखी है भूले सुधी सातो रसा विवस गिरत गातो रिजी बावरे है अब और कछु भाखी है। रानी प्रिय मिलन के लिए अनेक प्रकार की अभिलाषाएं कर रही है और सोच रही है कि प्रिय के आगमन पर हृदय की गुत्थियों को उसके सामने खोलेगी। इसके लिए उसने रोष और प्रेम से मिश्रित अनेक बातों को चुन चुन कर नाराजगी की जिन्हें पर्दे में अच्छी प्रकार सजा कर प्रकट करने के लिए तैयार कर रखा है। विरही की स्वाभाविक इच्छा होती है कि प्रिय के मिलने पर वह अपनी व्यथा को उसके सम्मुख रखे, लेकिन उसके मिलने पर प्रायः इस संबंध में सोची गई सारी बातें भूल जाती है क्योंकि प्रिय मिलन में से उत्पन्न प्रेमोन्माद में पूरी स्मृतियाँ जवाब दे जाती है। यहाँ भी विरानी भाग्यवश जब प्रिय को देखती है तो उसका शरीर पांचों ज्ञान इंद्रियों मन और बुद्धि की स्थिति से शून्य होकर इस प्रकार बेसुध हो जाता है कि प्रिय के सम्मुख कुछ और ही बातें निकल पड़ती हैं। प्रेम में विवलता की यह स्थिति अत्यंत स्वाभाविक है, लेकिन इस विवलता के कारण घनानंद की विरहणी प्रिय आगमन पर किए जाने वाले सामान्य आचरणों को भी प्राय भूल जाती है। काव्यशास्त्रीय परंपरा में प्रिय के आगमन पर अवसाद के वर्णन को साहित्याचार्यों ने वर्जित माना है, लेकिन घनानंद में मिलन प्रसंगों में भी एक विशेष प्रकार की पीड़ा या अवसाद की मनोदशा का चित्रण मिलता है। इसे एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। लहुजान पिया लखी लाखन प्राण पर परिबो की अभिलाष मरो सुख कहो कि भांति अनपिखियो पीर, अधीर भय नयन नीर भरो, घन आनंद कीज विचार कहा, महारंकल सोच संकोच रहो, चित चोपन चाह के चौदंद में, हय हर राय हिराय कव हरि परो। रानी प्रिय दर्शन से लाखों प्राणों की उपलब्धि जैसा अनुभव करती है, किंतु अपने प्राणों को उस पर न्यौछार करने की तीव्र अभिलाषा के अपूर्ण रहने पर दुखी होती रहती है। इस अनिर्वचनीय अनोखी पीड़ा से अधीर होकर वह निरंतर अश्रु प्रवाहित करती है। वस्तुतः मिलन वेदना की इस अनोखी पीड़ा के अश्रु प्रकारांतर से आनंदाश्रु ही हैं, जो मिलनोचित आचार के विचार नहीं कहे जा सकते। हृदय तीव्र आकांक्षाओं के हाहाकार में नायिका अपने शुद्ध बुद्ध खोकर ऐसा करती है, अतः उसके रुदन हाहाकार शुद्ध बुद्धि खोने आदि की क्रियाओं से किसी प्रकार के अपशकुन या अनाचरण की अभिव्यक्ति नहीं होती। सब मिलाकर यहाँ उसका अभिलाषाधिक्य और प्रिय की अनुपलब्धता की भावना ही प्रकट हुई है। वियोग के उपरांत प्रिय दर्शन पर प्रायः इस प्रकार की मनोदशा का चित्रण करानंद ने किया है। जो कहो जान लखय घन आनंद तो तन नई कुन अवसर पावत, कौन वियोग भरे असुआ जो संयोग में आ गई देवन देखन धावत। नायिका दयावश प्रिय के दिखाई देने पर प्रिय को भर आंख देख नहीं पाती। इस अवसर पर आंसू बाधा बनकर प्रिय को देखने का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। पता नहीं किस वियोग से भरे हुए ये आंसू संयोग काल में प्रिय को पहले ही देख लेना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि आंखों में अश्रु आ जाने पर कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए संयोग काल में भी नायिका प्रिय को देख नहीं पाती। वस्तुतः यह दशा संयोग काल की है। मिलनोपरांत की स्थिति और अधिक करुणाजनक हो जाती है। सपने को संपत्ति लव भई है मिल मिलमयी, मीत को मिलन मोत जानव न जहाँ कहाँ गयो, राखे आप ऊपर सुजान घन आनंद पे, पहके फटक क्यों रहिए फटी ना गयो। घनानंद के यहाँ प्रिय मिलन स्वप्न की भांति होता है। मिलन के बाद प्राप्ति की भी स्वप्नवत ही होती है। जिस प्रकार स्वप्न में मिली हुई संपत्ति स्वप्न के बाद स्वयं गायब हो जाती है, उसी प्रकार प्रिय की मिलन के बाद उसका मिलन सुख पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसलिए मिलन के बाद वेदना वेवल होकर वह कहती है कि पांव के फटते ही यह हृदय भी फट जाता तो अच्छा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद की संयोग भावना साहित्य में वर्णित संयोग की परंपरा से पर्याप्त भिन्न है। उनके यहाँ वियोग की भांति यह संयोग भी व्यथामूलक ही है। दर्शनाभिलाषा के अधिक वियोग की समानांतरता, प्रिय की उदासीनता, अपने जीवनगत विषम प्रेम आदि के कारण इनके संयोग भावना प्रायः वियोग संयुक्त है। कहीं कहीं संयोग के असुरोचित उल्लास या परंपरागत क्रियाकलाप भी इनमें मिल जाते हैं, लेकिन इसे इनकी विशेषता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भक्ति से संबंधित अपनी श्रृंगारिक रचनाओं में कवि ने संयोग का स्थूल तथा विलास प्रधान रूप अवश्य स्वीकार किया है। लौकिक प्रेम की उन्मादकता भी वहाँ नहीं मिलती। भक्ति के क्षेत्र में वह एक विशेष धार्मिक संप्रदाय की परिपाटी में ही बंधकर चला है, इसलिए मिलन प्रसंगों में वहाँ वे कोई निजी विशेषता नहीं ले आ पाए हैं। भक्ति संबंधी रचनाओं में भी अभिलाषा और सौंदर्य का आधिक्य अवश्य है, लेकिन लौकिक संयोग वाली व्यथा यहाँ गायब है। इस तथ्य को उनके पदों से आसानी से देखा जा सकता है। रीज रीज मुँह देख ही रहें, लाड़ लाड़ली की छपी मोहे, चकित भर कछुए न कहें, मोए मोए मन खोए जात है, रूप घर की मीत न लहें, मन आनंद पिय रसिक मुटुक, मन भाग निकाय दृगनि चहें। यद्यपि पदों में भी शब्दावली प्रायः कवित्त सवैया की ही है, लेकिन विषम प्रेम के लौकिक पक्ष का वैचित्र और लाक्षणिकता यहाँ कम मिलती है। नेत्र यहाँ भी रीज बावरे हैं, देखने की वैसी ही साध है, मुग्धता और चकित भाव भी है, लेकिन विषमता या उदासीनता जन आशंका के अभाव में लौकिक प्रेम की पीर यहाँ नहीं मिलेगी। पदों में संयोग काल की मनोदशाएँ ही अधिक चित्रित हैं। इसमें उपालंबादी उपस्थित प्रिय को निवेदित हैं, जबकि कवित्त सवैयम या आत्मनिवेदन अनुपस्थित प्रिय को संबोधित है। फलस्वरूप शब्दावली के समानता के बावजूद दोनों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। इसे समझने के लिए उपालम्ब का एक उदाहरण लिया जा सकता है। हौ तुम सो एक बात बूझति हों सांच कहो, मिलमाछन मिले से मोहन कैसे भांति रहो, उघरे हूँ अंतर पट राखत अपने गुणनि कहो, चौपन झूम झूम आनंद घननित नय नेह न हो, यह भी मिले माछ अनमिले उगरे तू हूँ अंतरपट निय नय नेह नव आदि प्रयोगों द्वारा प्रिय के निष्ठुर भाव स्वभाव और उसकी उदासीनता का संकेत हुआ है, लेकिन प्रिय की उपस्थिति के कारण इस उपालंब में लौकिक श्रृंगार का विरोध वैचित्र समाप्त हो गया है। ये सारे प्रयोग कवित्त सवैयों के हैं, किंतु यहाँ इनकी ताजगी और ताप प्राय समाप्त हो गया है।